arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम
सबसे बड़ा सुख। अपनी आलीशान कोठी के ऊपर की मंजिल की खिड़की पर खड़ी कमला की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। वो अपने अश्रुपूरित नेत्रों से बार बार फाटक को निहार रही थी, जहां उनका पोता राजू रोता बिलखता हॉस्टल भेजा गया था। बच्चे की चीखें अभी तक उनके कान में गूंज रही थी। माँ की रौबीली फटकार तथा पिता का निर्विकार चेहरा देखकर वह चीख कर बोला था, अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, बस हॉस्टल ही मेरा घर होगा। फिर दादी का आंचल पकड़कर उनसे लिपट कर बोला, दादी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जरूर मेरे पास आओगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इस घर में एक तुम ही हो जो मुझसे प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी भी इस घर में कोई सुनता नहीं है, तुम्हें भी किसी दिन ये लोग घर से निकाल देंगे। 8 वर्षीय पोते की बातें उनके अंतर मन को उद्वेलित कर रही थीं। कमला के पति सफल व्यवसायी थे। उन्होंने अपनी मेहनत तथा लगन से अपार संपत्ति उपार्जित की थी। उनके केवल एक पुत्र था ब्रजेश, जिसके लालन पालन में उन्होंने कोई कमी नहीं की थी। माँ की ममता और पिता के प्यार भरे संरक्षण ने ब्रजेश को भी एक सफल व्यवसायी बना दिया था। उनकी पत्नी एक कर्नल की बेटी थी, जिसकी रग रग में पिता का दबंग स्वभाव तथा अनुशासन समाया हुआ था। अनुशासन ने उसके ममत्व को भी धराशायी कर दिया था। पति के न रहने पर कमला ने अपने पोते राजू पर अपना समस्त प्यार उनेल दिया था। अब उसी को अपने से अलग करवाते देख उसका मन चीत्कार कर उठा था। बहू के वे शब्द जो उसने ब्रजेश तथा नौकरों के सामने कहे थे, कांटे के समान उन्हें चुभ रहे थे। जिस पोते के प्यार में डूबकर वो पति का गम भी भूल गई थी, उसी के प्रति ये शब्द सुनने पड़े थे। यहाँ आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, इसके चरित्र निर्माण के लिए हॉस्टल ही उचित स्थान है, यहाँ रहकर ये कुछ नहीं बन पाएगा। उनका मन तो हुआ कि कह दे, इतना बड़ा व्यवसाय मेरे बेटे ने संभाला हुआ है, वो सब कुछ इसी घर की चार दीवारी में रहकर सीखा है। पर वो जानती थी कि तब बहू नौकरों के सामने उन्हें जलील करने में देर नहीं करेगी और उनका बेटा मूक दर्शक ही बना रहेगा। राजू के कुछ खिलौने तथा कपड़े जो छूट गए थे, उनको उन्होंने अपनी कीमती चीजों के संग रख लिया। सोचा, अब तो राजू की इन्हीं चीजों को देख देख कर वो अतीत के उन्हीं आनंददायक क्षणों में पहुंच जाएगी, जब राजू उनसे लिपट कर अपनी नन्ही बाहें उनके गले में डालकर कहता था, दादी परी वाली कहानी सुनाओ ना। नौकर खाना खाने के लिए बुलाने आया, पर क्या उनके गले के नीचे कौर उतरता, उन्होंने मना कर दिया। बहू की तीखी आवाज सुनाई पड़ी, राजू इन्हीं का तो था, हमारा तो कोई लगता नहीं था, देखें कितने दिन भूख हड़ताल चलाती हैं। बेटे ने ऐसा मौन साधा कि लगा वो गूंगा हो। राजू को गए 4 दिन बीत गए थे। उन्होंने खाने के कमरे में पैर नहीं रखा था। वहां पहुंचकर राजू की खाली कुर्सी देखकर वो अपनी रुलाई पर काबू पा सकेंगी? दोनों समय खाना कमरे में ही मंगवा लेती थी। एक प्रकार से उन्होंने अपने को कमरे में कैद कर लिया था। जिस घर में राजू की खिलखिलाहट सुनाई पड़ती थी, वहां अब वीरानी सी फैली थी। बेटा बहू दोनों ऑफिस चले जाते थे, अब तो घर की दीवारें ही उनके संगी साथी रह गए थे। इधर राजू के जाने के बाद से घर में चुप्पी छाई थी। ऐसा लगता था इस शांति के बाद कुछ अनहोनी होने वाली है। एक दिन वो बाहर निकली, उनकी आंखें फाटक पर अटक गईं। अभी वो अपने को संतुलित करने की कोशिश कर ही रही थी कि बहू की आवाज सुनाई पड़ी, ना भाई मैं उनसे ये कहने नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेरी कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, तुम ही चाहते हो, हमने जो तय किया है कह दो, मैं तो उनकी नजरों में विष की दली हूं। वो समझ न सकें कि बेटा बहू किस विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं, पर सोचा एक दो दिन में पता तो चल ही जाएगा। दूसरे दिन बेटा उनके कमरे में आया, उन्हें लगा कि उन्हें दुखी देखकर शायद वो राजू को लेने जा रहा है और यही खुशखबरी सुनाने आया है। ब्रजेश ने उनसे आंखें चुराते हुए कहा, माँ मैं देख रहा हूँ राजू के जाने के बाद से तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो। तुम्हारी बहू और मैं ऑफिस चले जाते हैं, इधर मेरा बाहर जाने का कार्यक्रम बहुत बढ़ गया है। तुम्हारी बहू भी व्यवसाय में मेरी बहुत सहायता करती है, कभी कभी तो हम दोनों को ही बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे में तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। हम दोनों ने सोचा है तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज दें, वहां तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी और मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी सुख सुविधा का सभी प्रबंध हम कर देंगे, पैसे की कोई चिंता नहीं है। फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, हम दोनों तो देख रेख के लिए तुम्हारे मैनेजर हैं। वो अवाक पागलों के समान बेटे का मुंह ताकती रही। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा कि शरीर का खून किसी ने खींच लिया है, पर जल्दी ही उनका आत्माभिमान जाग उठा। उन्होंने गर्दन उठाकर कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों ने ठीक ही सोचा होगा। वैसे भी इस घर में मेरी कोई आवश्यकता तो रह नहीं गई है। अपमान से दुखी पलकों के ऊपर विवशता के जल की बूंदें टपक पड़ी। थोड़ी देर बाद ब्रजेश बोला, इसी शहर में यह आश्रम खुला है, यहाँ सुख सुविधा का सब इंतजाम है। बड़े बड़े लोग इसे मन लगाने का स्थान समझकर रह रहे हैं। वैसे भी जब तुम्हारा मन न करे तो घर तो है ही, तुम चली आना। पोते के चलते समय के शब्द उन्हें याद आने लगे। उसने कैसे विश्वास से कहा था, दादी आज माता पिता मुझे घर से निकाल कर हॉस्टल भेज रहे हैं, किसी दिन ये तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। पोते की भविष्यवाणी सचमुच सत्य साबित हो गई थी। उन्होंने अभिमान से गर्दन उठाकर कहा, मैं तैयार हूँ। तुमने सभी इंतजाम पहले से कर लिया होगा, वैसे भी यहाँ रुकने का तुक नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से तुम दोनों को मुक्त कर दूँ। ब्रजेश माँ से आंखें न मिला सका। चलते चलते बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, दो चार दिन बाद चली जाना। कमला ने कहा, मैं दो घंटे बाद चली जाऊंगी, ड्राइवर को स्थान बता देना। लगभग 60 सालों तक सुख की शैया पर सोई उनकी काया ने कांटों की चुभन का अनुभव नहीं किया था। जीवन के दो पहलू भी होते हैं, ये अब उन्होंने जाना। अपने खून से सींची औलाद भी पराई हो सकती है, ये भी आज ही उन्हें पता चला। उनके अंतःकरण से आवाज आई, मैं तो मन से स्वस्थ तथा धन से परिपूर्ण होते हुए भी इतनी सी चोट से घबरा जाती हूँ, पर उन वृद्धों की मनस्थिति क्या होती होगी जो तन मन तथा धन तीनों से वंचित हैं। अब उन्हें अपना दुख नगण्य लगा। एक अदम में उत्साह तथा विश्वास से उन्होंने अपना पथ चुन लिया था। चेकबुक और अपना जरूरी सामान उन्होंने सूटकेस में रख लिया और बिना बेटे बहू की तरफ देखे गाड़ी में बैठ गई। वृद्धाश्रम शहर से दूर एकांत स्थान पर था। चारों तरफ हरियाली से घिरा वो भवन मन को शांति देने वाला था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जीवन की सभी आवश्यकताओं का सामान वहां उपलब्ध है। जिसने भी उसे बनवाया था वो बहुत सोच विचार कर ही बनवाया था। क्योंकि अभी वो नया ही बना था, इसी कारण 10-12 ही स्त्री पुरुष वहां थे। सभी वृद्धों के चेहरों पर अपने अतीत की छाया मंडरा रही थी। कमला ने मुस्कुराते हुए सबसे अभिवादन किया। उन्हें प्रफुल्लित तथा मुस्कुराते देख सभी चकित रह गए। सभी वृद्ध समृद्ध परिवारों के सदस्य थे। पैसे की उनके पास कमी नहीं थी, पर अपमान की वेदना सहते सहते वे टूट चुके थे। कमला उनके पास आकर बैठी और बोली, देखिए अगर मैं कुछ कहूं और उससे आपको पीड़ा पहुंचे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। मैं इसी शहर के सफल व्यवसायी प्रताप सिंह की पत्नी कमला हूं। 8 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने बेटे ब्रजेश के साथ रहती हूं। आप सबके समान मुझे भी घर का फालतू प्राणी समझकर यहां भेज दिया गया है। थोड़ी देर के लिए मैं भी बहुत मायूस हो गई थी, पर जब मैंने सोचा कि मेरे पास तो धन और स्वास्थ्य दोनों ही हैं, पर उन वृद्धों की मनःस्थिति क्या होती होगी जो तन मन और धन तीनों से वंचित होंगे, तो ये महसूस करते ही मुझमें एक अदम्य उत्साह जागृत हो गया। फिर मुझे वो अपमान अपमान न लगकर वरदान लगा। हम सबको प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि कुछ तो हमारे पास है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। हमें ये नहीं दिखाना है कि हम टूट चुके हैं। जीवन में यही समय है जब हम खाली हैं और कुछ सत्कार्य करने में सक्षम हैं। आप सबके पास दौलत की कमी नहीं है, ये सभी दौलत आपने अपने पुरुषार्थ से संचित की है। इसे उपयोग में लाने का आपको पूरा हक है। अपने बच्चों के लिए तो सभी करते हैं, पर किसी ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े उन वृद्धों के बारे में सोचा है जो तिल तिल कर मर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इस कारण उनकी जिंदगी कुत्तों से बदतर हो गई है, अपना ही खून सफेद हो गया है। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? अगर हमने एक दुखी को अंत समय शांति तथा सुख दिया तो इससे बड़ा नेक कार्य और क्या हो सकता है? देने से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। मैंने अपने बेटे को इस योग्य बना दिया है कि वो स्वयं कमा सकता है। मैं अपनी समस्त संपत्ति उन वृद्धों पर खर्च करूंगी जो इस वृद्धाश्रम में पैसे के कारण नहीं आ सकते। हम उनसे वही कार्य करवाएंगे जिनमें उनकी रुचि होगी, ताकि वे अपने को दूसरों पर आश्रित समझकर हीन भावना से ग्रसित न होने पाए। हम अपने पैसे से दुत्कारे हुए वृद्धों को नवजीवन दे सकें तो इससे क्या हम सबको संतोष और प्रसन्नता नहीं होगी? उन वृद्धों के पोपले मुखों पर संतुष्टि की एक सीमित रेखा सी खींच गई। पूरा हॉल तालियों तथा कहकहों से गूंज गया। हर वृद्ध का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अब तक खाली बैठे बैठे उनकी आंखों के आगे अतीत चलचित्र की भांति कौंद जाता था जब उन्हें फालतू प्राणी समझकर उनकी उपेक्षा की जाती थी, पर अब उन्हें अपने अस्तित्व की शक्ति का भान हुआ था। सभी बारी बारी से बोल रहे थे कि हमारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उन्हें हम वृद्धों का निवास स्थान बना देंगे, वहां ऊंच नीच व जाति पाति का भेदभाव नहीं रहेगा। कमला की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जो हमसफर इतने पास आ जाते हैं उन्हें फिर एक दूसरे को अपनी बात समझानी नहीं पड़ती। उनकी आंतरिक अनुभूति की वाणी समान मुखर हो उठती है। सभी वृद्धों की आंखें विजय गर्व से चमक रही थीं। दूसरे दिन कमला ने सभी वृद्धों से अपने पोते की भविष्यवाणी के बारे में बताया और ये भी कहा कि वो उसकी पसंद की चीज़ें लेकर अक्सर उससे मिलने जाया करेंगी। इतवार के दिन उन्होंने राजू की पसंद की ढेर सारी चीज़ें खरीदी ताकि वो अपने दोस्तों को भी दे सके। हॉस्टल पहुंचते ही राजू उनसे लिपट कर बोला, दादी मैं जानता था तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, यही मेरी प्यारी दादी हैं। कमला ने सभी सामान बच्चों में बांटा और कई घंटे उनके साथ व्यतीत करके ये कहकर लौट पड़ी कि वो आती रहेंगी। राजू ने पूछा, घर में सब ठीक है ना? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं घर में नहीं रहती, एक वृद्धाश्रम है वहीं पर रहती हूँ। राजू चीख कर बोला, मैं समझ गया हूँ, उन्होंने तुम्हें भी निकाल दिया है। हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया, राजू वहाँ तेरे बिना मेरा मन भी तो नहीं लगता था, इस कारण भी माता पिता ने मुझे आश्रम भेज दिया। मैं सब समझता हूँ, वे हम दोनों को प्यार नहीं करते, इसी कारण घर से निकाल दिया है। उन्होंने प्यार से राजू के माथे को चूमते हुए कहा, बेटे माता पिता के लिए ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, वे जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं। हॉस्टल में बच्चों के संग तुम्हारा मन लग जाएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ भेजा है। राजू ने अविश्वास से दादी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। फिर मासूमियत से बोला, दादी अपने घर में कब ले चलोगी? कमला की आंखों में आंसू तैर आए, जिन्हें उन्होंने बड़े कौशल से पीकर कहा, बेटे हमारे घर में सभी बूढ़े लोग हैं, तुम्हारा वहां मन नहीं लगेगा, हम ही तुम्हारे पास आते रहेंगे। वृद्धाश्रम लौटने पर काफी देर तक उनका मन उदास रहा। फिर उनके भीतर से आवाज आई, तुझे भावुकता में बहकर अपने ध्येय को नहीं भूलना, तेरा लक्ष्य तेरे सामने है। इस समय 20 हाथ तेरी सहायता के लिए तैयार है, ये हाथ दिनों दिन बढ़ते ही जाएंगे। सफलता तुझे पुकार पुकार कर कह रही है, आगे बढ़ती जा। ये सोचते ही अदम्य उत्साह से वो उठ खड़ी हुई। दूसरे दिन कमला ने वृद्धों से कहा, आप लोगों के पास जो भी कोठियां हैं अगर आप खुशी खुशी उन्हें वृद्धाश्रम बनाने के लिए दे सकें तो जो व्यय हम इस वृद्धाश्रम पर कर रहे हैं वही हम अपने आश्रम पर खर्च करेंगे। हम सभी मिलकर उन्हें आवश्यक सामान से सुसज्जित कर कई वृद्धाश्रम बना सकते हैं। मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसे मैं वृद्धाश्रमों को दे रही हूँ। ये सही है कि इस उम्र में हम थक जाते हैं, पर जिस उत्साह से हम कार्य करेंगे उससे शायद किसी को भी थकावट महसूस नहीं होगी। हर वृद्ध ने जिसके पास पैसा था वो दिया और जिसके पास कोठी भी थी उसने सहज कोठी तथा पैसा दोनों ही दिए। जब वृद्धों ने अपनी अपनी कोठियां खाली करवानी शुरू की तो रिश्तेदारों के होश उड़ गए। अब उन वृद्धों ने बड़े उत्साह से उसमें आवश्यक सामान तथा नौकरों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। समाचार पत्रों में इन वृद्ध आश्रमों की प्रशंसा में कॉलम भर गए। ऐसे नेक काम की तो लोगों ने कल्पना भी न की थी। मध्यम वर्गीय परिवार के वृद्धों को प्राथमिकता मिली। हर वृद्ध आश्रम का ट्रस्ट बनाया गया ताकि जिन्होंने पैसा दिया है उनकी मृत्यु के बाद भी वे सुचारू रूप से चलते रहे। वृद्धों के पोपले मुखों पर रौनक आने लगी। समाज के जो संभ्रांत परिवार थे वहां एक अनोखा परिवर्तन आया। परिवार की युवा पीढ़ी जहां सतर्क हुई वहीं वृद्धों के प्रति उनके परिवार में भी परिवर्तन आया और पूरी देखभाल होने लगी। कमला तथा अन्य वृद्धों की जिन्होंने इन आश्रमों को बनवाने में अपना पूरा सहयोग दिया था देखा देखी बहुत से रईसों ने अपना पैसा तथा सहयोग देना शुरू कर दिया क्योंकि वे स्वजनों के व्यवहार परिवर्तन के इस छलावे को समझ चुके थे और किसी न किसी रूप में इन वृद्ध आश्रमों से संपर्क बनाने की चेष्टा में लग गए थे। एक तरफ वाहवाही की चाह थी तो दूसरी ओर परोपकार की भावना जोर मार रही थी। कमला वृद्ध आश्रम के एक कक्ष में बैठी विचारों में मगन थी। उनके चेहरे पर वेदना और शांति के भावों का अनोखा मिश्रण झलक रहा था। अब उन्होंने जाना कि कांटों की शैया पर सोया प्राणी ही कुछ करने की क्षमता रखता है। जिस सत्कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था उसको प्रेरणा देने वाला उनके बेटे बहू का व्यवहार ही तो था। कमला ने महसूस किया कि देने से बड़ा सुख और कोई नहीं है। दूसरों को सहायता तथा सुख पहुंचाकर अपने हृदय को कितनी शांति और सुकून मिलता है। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया था।
arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है, लेखिका श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन, वाचक स्वर संज्ञा टंडन।